दूसरी चीज़ जो बेसिक पिलर है तकदीर पर ईमान का, वो क्या है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ उसको पता था और जो मैंने पिछले हिस्से में बता दिया कि उसने लिख लिया, उस सब को रिटर्न फॉर्म में लौहे महफूज में रखा हुआ है। ये मेरा और आपका ईमान है। जैसे आप देखिए कि आपके हाथ में बुक है ना, पहले जहन में क्या आता था, लिखा हुआ है, अच्छा मोटी सी कोई किताब होगी, राइट, या कोई रजिस्टर होगा। अब वो लौहे महफूज क्या है, अल्लाह नोज़ दी बेस्ट। आज आप देखिए कि स्क्रीन पे हम लिखते हैं, माउस पे हम करते हैं, हम अपने कीबोर्ड से लिखते हैं, आज का कागज़ जो है वो स्क्रीन है और आज का कलम जो है वो माउस है। हमारा ईमान है कि जो कुछ अल्लाह ने लिखा हुआ है ना, अब होता क्या, ये बहुत दिलचस्प है, वेरी इंटरेस्टिंग। अब आज सुबह से मैंने और आपने जो भी किया, ठीक है, जब हम कोई काम करते हैं ना, उस काम को हमारे फरिश्ते लिखते हैं। अल्लाह ताला ने राइट और लेफ्ट में दो एंजल्स रखे, दो फरिश्ते, किरामन कातिबीन। सूरत अल इन्फितार में अल्लाह ताला कहते हैं, इन्ना अलैकुम लहाफिजीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। अल्लाह ताला ने उनको जिम्मेदारी दे दी कि तुमने इनके हर अमल को लिखना है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही जहन में उठता हुआ सवाल आएगा कि जब पहले जो लिखा हुआ है तो फरिश्ते क्यों लिखे। अब बात जो मैं कहूँगी ना, उसको बड़े गौर से सुनना। अल्लाह ने सब लिखा हुआ है, फरिश्ते हमारी डे टू डे चीज़ें लिखते हैं। जैसे कुछ लोगों को शौक होता है ना अपनी डायरी लिखने का, वो अपने किरामन कातिबीन खुद बनते हैं, रोज़ सुबह उठ के इतने बजे उठी, चाय पिया, खाना खाया, ये किया वो किया, लेकिन फरिश्ते हमारी एक एक चीज़ लिखते हैं। सूरत बनी इसराइल में इसका तذکرہ है, वकुल्ला इंसान नलज़म ना हो तोरहू फ़ी उनुक़ी व नुख़रिज लहू यौमल क़ियामति किताब यलक़ाहु मंशूरा, कि हर इंसान की गर्दन में अल्लाह ताला ने उसका नाम अमाल डाला हुआ है, बुक ऑफ डीड्स लगाई हुई है, और क़यामत के दिन हम उसको एक बुक की फॉर्म में रखेंगे। ये तो वहाँ होगा। अब डेली बेस्ड क्या होता है, दिन में दो बार एंजल्स को अल्लाह ताला ड्यूटी चेंज करवाते हैं। सुबह को फजर की नमाज का जो बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम होता है ना, तो वो फरिश्ते जिन्होंने हमारे सारी रात के अमल लिखे होते हैं, और वो सब कुछ लिखते हैं, हम क्या बोलते, क्या सुनते, क्या करते। इस पर एक लेक्चर है किताब ज़िंदगी, और इसमें और भी एक दो टॉपिक है जिस पर इस मौजू को हमने बड़ी डिटेल से शेयर किया हुआ है कि हमारा हर अमल लिखा जाता है, हम सोचते, बोलते, देखते, करते, वट एवर। अच्छा, अब वो फरिश्ते अल्लाह ताला के पास जाते हैं और एक फ्रेश टीम वो सुबह फजर की नमाज़ पे आके अपने काम पे। अब आप कहते दिखाओ किधर है, वी कैंट। देखिए यही फ़र्क है गैब के अंदर और दुनिया की चीज़ों के अंदर। बस आप देखिए कि आप कहते पानी में जर्म्स है, हम कैसे देखेंगे, आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में लगा के देखें, आपको इतने जर्म्स दिखेंगे, आप पानी पियेंगे ही नहीं, राइट। आप मैग्नीफाइंग ग्लास से अपने बैक्टीरिया और वायरसेस तो देख लिए, लेकिन एंजल्स नहीं आप देख सकते। हमारा ईमान है कि क़यामत तक कोई ऐसी इन्वेंशन नहीं होगी, कोई ऐसा गैजेट नहीं आएगा कि जो किरामन कातबीन हमें दिखा सके। ये गैब की एक डिस्क्रिप्शन है। खैर, अब वो फरिश्ते ऊपर गए, दूसरे आके सुबह बैठ गए। इसी तरह असर की नमाज के वक्त में ये वापस जाएंगे तो रात वाले आएंगे, शिफ्ट चेंज होती है। अब वो फरिश्ते सारे दिन का हिसाब लेकर गए, इमेजिनेशन में ले आइए, अल्लाह ताला ये तेरे बंदे ने कमाया है। अब आपको पता क्या होता है, कैन यू इमेजिन, जो फरिश्ते हमारी डे टू डे, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड रिपोर्ट बनाकर लेके जाते हैं ना, उधर लौहे महफूज में से आज की रिपोर्ट लाई जाती है। इट्स क्वाइट सिमिलर। अल्लाह को पहले ही पता था हम क्या करेंगे, तो फिर सवाल पैदा होता है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने फरिश्तों से ये काम क्यों कराया। अगर अल्लाह ताला अपने उस इल्म की बुनियाद पे भी मुझे और आपको जन्नत या जहन्नुम में डालना चाहे ना, ही कैन डू, लेकिन फिर हम मानेंगे नहीं। ये फरिश्ते जो लिखते हैं ना, ये जस्ट टू शो अस द एविडेंसेस एट द डे ऑफ जजमेंट। बात समझ गए आप? देखिए कोई बंदा जहन्नुम में जाएगा तो बाद में उसको कहा जाए क्यों गया, देख अल्लाह ने तो लोहे महफूज में लिखा हुआ था, तो वो कहेगा कि ये तो अल्लाह ने पहले से लिखा हुआ था। यहाँ मैं साथ साथ जहन में आने वाले कुछ सवाल का जवाब भी दे देती हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं ना कि जब अल्लाह ने पहले से लिख दिया हुआ है तो फिर अल्लाह का कसूर है। मतलब लोगों को आप मना करें ना किसी गलत काम से कि फिल्म नहीं देखो, तो क्या कहते हैं कि जी इस वक्त हमारी किस्मत में अल्लाह ना लिखता। तो पहली बात है कि अगर अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में इस वक्त फिल्म देखना लिखी है, तो क्या आपको अल्लाह ने दिखाया है वो फटाफट के जल्दी देखो मेरा लिखा हुआ गलत ना हो जाए। आपने फिल्म अपनी चॉइस से देखी, आपका दिल चाहा, आप इधर उधर घूमते रहे, करते रहे, आपका फन का मूड था, कुछ भी था, जो भी आपने करना था, जब आपने खुद देख ली तो फिर अल्लाह के इल्म से जाके फरिश्तों ने मैच की तो वाकई लिखा हुआ था। इसको इसे एक एग्जांपल से समझिएगा, और वो क्या है कि समटाइम क्या होता है कि एक बच्चा स्कूल में जाता है ना, अब उसका टीचर उसको देख के कहता है कि ये बच्चा बहुत शरारती है, इसका पढ़ने लिखने में कोई भी शौक नहीं है। तो एक दिन वो उस बच्चे को कहता है, तुम जिस तरीके पे चल रहे हो ना, अगर तुम्हारा यही तरीका रहा तो एक दिन तुम इस शहर के बहुत बड़े बदमाश बनोगे, बहुत बड़े डाकू बनोगे। फिर वो जो उसका टीचर है वो उसको एक पेपर पे ये बात लिख के ना वो कहता है कि इसको तुम रख लो अपने पास कहीं, और कभी किसी बड़ी मुश्किल में आओगे ना तो फिर तुम इसको खोल के पढ़ना। अब क्या हुआ, बाय द टाइम बिल्कुल वही हुआ, वो बच्चा पढ़ा नहीं, स्कूल में नहीं गया, और एक दिन वो जेल में चला गया। जब जेल में चला गया तो उसको जो जेलर था उसने सजा देनी चाहिए, तो वो क्या उसको कहे कि वो मेरे टीचर ने एक पर्ची दी थी, मैं उसको खोल के देखता हूँ क्या लिखा था। जब खोल के देखता है तो उसमें यही लिखा है कि ये शख्स एक दिन अपनी खराबियों की वजह से जेल में पहुंच जाएगा। वो फौरन जेलर को बुलाता है, कहता है देखो मुझे नहीं मेरे इस टीचर को जेल में डालो, क्योंकि इसने तो आज से 10 साल पहले ही लिख दिया था कि मैं जेल में आऊँगा, तो मुझे बताइए कि कोई इसको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा ना। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि वो कहेगा कि टीचर ने कहा था लेकिन हमने तुम्हें खुद चोरी करते हुए पकड़ा। इसी तरह अल्लाह सुबहाना ताला मेरे और आपके अमाल को जो लिख रहा है ये क्यामत के दिन जाके हमें दिखाएगा हमारे किए हुए अमाल के साथ। फिर यहाँ वो जुमला याद करें कि तकदीर इल्म इलाही है, हुक्म इलाही नहीं। अगर तो अल्लाह ने हुक्म दिया होता ना फिर हम मजबूर थे वाकई। फिल्म देखो, जल्दी सिनेमे में जाओ, जल्दी शराब पियो, राइट? तो जब हम कोई काम करते उस वक्त तो हमें नहीं पता था ना। जब भी अच्छा या बुरा काम करते हैं तो हम अपनी विल से करते हैं। फिर दूसरी बात देखिए कि अगर वाकई गलत कामों को अल्लाह ने चूंकि लिखा हुआ था तो अब हमें उस पर गुनाह नहीं होना चाहिए, राइट? तो फिर नेकी का सवाब क्यों हो? तकदीर में लिखी हुई थी, ठीक है? तो लिहाजा हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने ये लिखा हुआ है, और जो कुछ भी होता है क्यामत तक का ये उसमें मौजूद होगा। ये चीज़ सूरत अल हज की आयत नंबर 70 में, और इसी तरह से ही मुस्लिम की रिवायत 6773 और तिर्मिज़ी 2055 और 2155 में मौजूद है। रेफरेंसेस आप जाके डिटेल से देख लीजिए। तीसरा, अल्लाह सुबहान तआला के बारे में तकदीर के ज़िमन में हमारे जहन में जो यकीन होना चाहिए वो क्या है कि अल्लाह सुबहान तआला की मशीयत और कुदरत पर पूरा यकीन हो। अब ये बड़ा अहम मसला, इसको समझिएगा। देखिए एक लफ्ज़ होता है मशीयत, मशीयत है शाह से, जैसे हम कहते हैं ना इन शाह अल्लाह मा शाह अल्लाह, शाह से मशीयत। दुनिया में जो कुछ होता है ना ये अल्लाह की मशीयत से तो होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अल्लाह की रज़ा से भी हो। मिसाल से समझाती हूँ बात, चूंकि मुझे पता मुश्किल टॉपिक है इसलिए आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन फ़ायदा तो होगा इंशाल्लाह। आप देखिए कि एक मुल्क नया बनता है तो जो हुक्मरान है या जो बादशाह है वो उस मुल्क में सब कुछ बनाते हैं ना। सड़कें बनेंगी, वहाँ स्कूल्स बनेंगे, वहाँ ग्रोसरी स्टोर्स बनेंगे, तो वो वहाँ जेल भी बनाता है। क्यों? क्या किसी बादशाह की खुशी है कि लोग चोरियां चकारियां करें फिर मैं उनको जेल में डालूं? नहीं है ना। लेकिन फिर भी उसको क्यों बनाना पड़ता? कि उसको पता है कि मैं ना भी चाहूंगा फिर भी कोई ना कोई जरूर कानून को तोड़ेगा, गलत काम करेगा, तो उसको सजा मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि किसी मुल्क की जेल बादशाह की मशीयत से बनी है लेकिन उसकी रजा नहीं है। दुनिया में जो कुछ मेरे और आपके साथ हो रहा है, या मुसलमान और काफिर के साथ, या इवन जंगें लड़ाइयाँ, हर चीज़ होती अल्लाह की मशीयत से है, क्योंकि वो कुन फयकून का मालिक है। लेकिन अल्लाह को खुशी नहीं है उसमें। खुशी किस चीज़ में? अच्छे कामों में। जैसे एक किंग है, अगर किसी मुल्क में वो कोई अच्छा काम करता है, कोई पार्क बनाता है, तो वो खुशी से बनाता है ना कि मेरे लोग हैं वो खुश रहें, एंटरटेनमेंट मिले। तो दुनिया में जो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मसलन जंगें होती हैं और दुनिया में जलजले आते हैं, किलिंग होती है, फसाद है, ये होता सब अल्लाह की मशीयत से है, बट अल्लाह ताला इससे खुश नहीं है। बात वाज़े? आप अपने घर में कई काम ऐसे हैं जो सिर्फ मजबूरन आप करती हैं, आपका दिल नहीं करता लेकिन आपको पता है कि मैंने ये ना किया तो इससे ज़्यादा बिगाड़ होगा। तो अल्लाह सुबहाना ताला की मशीयत नाफिज हो जाती है और उसकी कुदरत है। जो कुछ पैदा हुआ है और जो कुछ होने वाला है दोनों आपस में लाजिम व मलजूम है। यानी अल्लाह ताला ने जो कुछ आज पैदा कर दिया है, जो उसके बाद होगा वो सब कुछ होगा। फिर इसी तरह से आप ये भी याद रखिए कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये भी लिखा हुआ है। तकदीर सिर्फ मेरी आपकी नहीं है, ये भी एक पॉइंट अलग से नोट कर सकते हैं आप लोग कि तकदीर सिर्फ इंसानों की नहीं होती, इंसानों की भी है, जानवरों की भी है, पहाड़ों की भी है, सूरज चांद की भी है। दो लफ्ज़ इसके लिए कुरान पाक में आए, कद्दर कद्दर युकद्दिरु तकदीर। लफ्ज़ तकदीर भी इसी से है, अंदाज़ा करना। जैसे आप देखिए ये घर है ना, इसको यूँ समझिए कि जब ये घर बना था तो इससे पहले इसका नक्शा बना था, पूरा इसका मैप बना, फ्लोर प्लान बने, फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिक प्लान बने, जो कुछ भी होता है। फिर उसके बाद लेबर लगी तो उन्होंने ये घर बिल्ड कर दिया। अल्लाह सुबहाना ताला ने इस दुनिया को बनाने से पहले इसका पूरा प्लान बनाया, ज़मीन सूरज चाँद सितारे आप ये वो। इस वक्त मैं और आप क्या कर रहे हैं, अल्लाह के उस प्लान को बिल्ड कर रहे हैं। बात वाज़ है, प्लान पीछे से आया, यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये करना है, लेकिन ये सब अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ से है। फिर इसी तरह याद रखिए कि अल्लाह ताला जिस काम को नहीं चाहता, इसकी वजह ये नहीं है कि वो कर नहीं सकता, इसकी वजह ये है कि अल्लाह की मशीयत का ये तकाजा है कि वो काम ना हो। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़, चौथी जो आखिरी चीज़ है, हर मौजूदा चीज़ जो भी दुनिया में है उसको अल्लाह ने तख्लीक किया है और कोई इसमें शरीक नहीं। मसलन दुनिया में इंसान पैदा किए किसने बनाए, फरिश्ते, शैतान। अब लोग सवाल करते हैं फिर अल्लाह ने शैतान क्यों बनाया, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यानी आजमाइश है। जैसे अपोजिशन तो होती है हर हुकूमत में ना, कि देखते हैं क्या होता है। ये बताइए कि अल्लाह ताला फिर अल्लाह ताला ने शैतान को अपनी मशीयत से बनाया या अपनी रजा से? मशीयत से बनाया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो हमने देखी, इस सारी बातों का मैं आपको खुलासा अपने लफ्ज़ों में देती हूँ कि जब ये सब कुछ अल्लाह ने बना लिया, अब इंसान का इसमें क्या रोल है? अब देखिए ना, अल्लाह ने पहले से बना लिया, लिख लिया, अब जो हो रहा है वो हो रहा है, तो इंसान कितना कुछ इसमें आज़ाद है। इसके बारे में आप दो लफ्ज़, तकदीर ब मुकाबला तदबीर। तकदीर के मौजू पे ज़्यादा बातचीत करना पसंदीदा नहीं है, ये याद रखिए। जितनी बात कुरान और हदीस में आ गई उसी पे अगर हम रहें, फोकस करें तो बहुत है, लेकिन बहुत ज़्यादा बात नबी सल्लम ने भी इस पे नहीं की। लेकिन इसको यहाँ से ये समझ लीजिए, इस तरह से समझिए कि दुनिया में जो कुछ होता है ना, वो अल्लाह का इरादा और इंसान का इरादा मिलने से होता है। बात समझिएगा, कोई भी काम अल्लाह चाहे और बंदा ना चाहे तो नहीं होगा। बस अल्लाह ताला चाहते हैं कि सब लोग मुसलमान हो जाएं, तौहीद को माने। चले हम मुस्लिम्स की बात करते हैं, अल्लाह ताला चाहते हैं कि सब लोग कुरान पढ़ें, समझे, अर रहमान अल्लाम अल कुरान। ठीक है, अब अपने ऊपर मैं लेती हूँ कि अल्लाह ताला का इरादा है कि मैं पढ़ूँ कुरान, लेकिन मेरा इरादा ही नहीं है। आई डोंट टेक इट सीरियस, इट्स फाइन, आई एम बिज़ी, आई डोंट थिंक सो आई कैन डू दिस। नो नो, जिस तक मेरा इरादा साथ नहीं मिलेगा ना, तो अल्लाह के चाहने से नहीं होगा कुछ। अल्लाह ने कभी ज़बरदस्ती नहीं किसी के ऊपर की। ला इकराह हफ़िद दीन कद तबैना रुश्द मिन अलगी। अल्लाह ने हिदायत को गुमराही से वाज़े कर दिया, अब किसी को बाय फोर्स अब मुस्लिम नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसके लिए एक एग्जांपल समझे, माचिस हम पाकिस्तान में चलाते थे ना, अभी भी चलती होगी, जहाँ आप देखिए कि एक डिब्बी होती है ना, उसके ऊपर एक मसाला लगा होता है, और इसी तरह स्टिक के ऊपर भी होता है। खाली स्टिक भी पड़ी हुई है तो आग नहीं है, और खाली डिब्बिया की भी नहीं, लेकिन जब वो आप स्टिक को उस पर रगड़ते हैं तो क्या होता है, आग निकलती है। बस आप समझिए कि अल्लाह का इरादा और आपका इरादा, एक मैच बॉक्स के ऊपर लगा हुआ मसाला और एक स्टिक के ऊपर है, जब दोनों इरादे मिलते हैं फिर काम होता है। पहले मिसाल आपको दी कि अल्लाह ताला चाहता है कि हम कुरान पढ़ें, लेकिन हम इरादा नहीं करते, वी डोंट वांट टू बी गाइडेड, हम मेहनत नहीं कर सकते, हम कुर्बानी नहीं देते, हम कहते हैं वी आर टू बिज़ी विद आवर लाइफ, तो अल्लाह कहते नहीं तो ना सही। आप दूसरी तरफ कर लीजिए, बस दफ़ा क्या होता है, बंदा चाहता है कुछ करना लेकिन अल्लाह नहीं चाहता, तो फिर कैसे नहीं होता? आप पूरी भाग दौड़ करके टिकट बुक कराते हैं, जाते हैं ये वो, जल्दी करो एयरपोर्ट पे, एन बीच रास्ते में कहीं ट्रैफिक में स्टक हुए, आपकी फ़्लाइट चली गई। अब क्या हुआ, टिकट आपने बुक कराई, तैयारी की, लगेज लिया, सब किया, लेकिन आप एन टाइम पे जहाज़ तक नहीं पहुंच सके। अभी सूरत में क्या हुआ, यू डिसाइड समथिंग बट अल्लाह डिडंट वॉन्ट टू डू दिस। वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। फिर एक और क्वेश्चन जहन में आता है तकदीर के साथ, और वो क्या है कि ये पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, हम तीन चीज़ें कहते हैं ना, अल्लाह सुबहाना ताला का इल्म क्या पास्ट का या फ्यूचर का या प्रेजेंट का फ़र्क है या एक है? आप और मैं जो काम हो सकता है पिछले हफ्ते कर चुके हैं, हमें याद है ना, लेकिन क्या मुझे और आपको अब 5 साल पहले की कोई बात याद है जो आज से हमने 5 साल पहले की थी? नहीं याद ना। वक्त के साथ साथ जो पास्ट का नॉलेज होता है ना, वो हमारा कम हो जाता है, और फ्यूचर में क्या होना है वो तो हमें बिल्कुल नहीं पता। जस्ट वी कैन प्लान समथिंग, दैट्स इट। हमारा प्लान है 1 साल बाद ये करेंगे, 2 साल बाद करेंगे, 30 साल बाद। अल्लाह सुबहाना ताला का जो नॉलेज है ना हमारे आपके बारे में या दुनिया के, वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से बिल्कुल आज़ाद है। कैसे, इसको एक मिसाल से बताते हैं। देखिए, हम यहाँ मिल्टन में आए ना, हम लोग मार्कम से आए, राइट? अब जब हम वहाँ से निकले इधर आने के लिए, हमारे नेविगेटर ने हमें बता दिया कि 1 घंटा 2 मिनट लगेंगे, मिसाल है। अब आजकल उसमें गैजेट्स ने ये भी बता दिया कि टेक द शॉर्टेस्ट और टेक द लॉन्गेस्ट, और ये है और वहाँ ट्रैफिक है, ये इनके गैजेट्स है ना। लेकिन जिस वक़्त मैं और आप घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए, तो हमें ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली रास्ते में कौन सी गाड़ी कहाँ मिलेगी। इसके बरक्स आप सोचिए, जैसे ह्यूस्टन है ना, तो वहाँ से आप डेलस जाते हैं। अब आप जब ह्यूस्टन से निकले तो आपको नहीं पता डेलस में क्या हो रहा है, लेकिन इन बिटवीन जो रास्ता है उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। अगर आप सूरज से कहें कि क्या वो ह्यूस्टन को देख रहा है, देख रहा है, उसको सेम टाइम पे डेलस में क्या कुछ हो रहा है वो भी पता है, और पूरी ह्यूस्टन टू डेलस की जो रोड है उस पर क्या होगा वो भी पता है। बस आप ये इमेजिनेशन में ले आए, ये बातें बियॉन्ड द लिमिट है। अल्लाह सुबहाना ताला तो सूरज से भी बहुत बड़ा, वो तो खालिक है उसका, उसके लिए पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट इज इक्वल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी मैं और आप करते हैं ना, वो सब कुछ अल्लाह ताला के इल्म में मौजूद होता है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हम अल्लाह ताला की तकदीर को बदल सकते हैं?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First, we start off with the self-analysis question. Do I really believe that who Allah is? Do I really feel the power of Allah subhanahu wa ta'ala? Do I really know the majesty of Allah subhanahu wa ta'ala? Today we get all the information about faith. It is not going to change one's relationship with Allah unless we know that Allah subhanahu wa ta'ala has all the knowledge, the complete knowledge. Number two point. Everything that Allah already knows is written in Lauhe Mahfooz. So what is Lauhe Mahfooz? Only Allah knows it. When we do anything, our angels write it down. Allah has already written everything in Lauhe Mahfooz anyway. Then why angel write everything for us every single day? The names of those angels are Kiram and Katibin. Twice a day, their duties change. They go above and take all the knowledge, and the fresh angels, set of angels, come down and till Fajr time. Where are they? We don't know because they're unseen. Same thing happens in Asr time. They take our books, and then it is cross-examined against Lauhe Mahfooz. It is matched word to word. Why? Because a believer won't agree on a day of judgment that I did this and I did that. For example, if a teacher writes down for a student, you will become a robber and keep this paper and later you can see this. He grows up and he does become a robber. Then he reads this paper at that time. Then he wanted to say to people who jailed him, don't jail me, jail my teacher because he said this 10 years ago. The jailer won't read. He said, you did this stuff, not your teacher, so we're going to hold you accountable. Now, Allah doesn't order our faith. He just know it. Number third thing, Allah's Mashiach, His will. So what is that? If a new town is made by any king or something, he makes everything in that. Hospitals, schools, and he makes jail in it too. Why? Because he knows that it will be needed. That doesn't mean that necessarily he wants people to become criminals. Similarly, things happen by Allah's Mashiach, Allah's planning, but not necessarily that Allah wills it to happen. Everything has fate, including mountains, animals, everything. Allah made plans for us for the whole world before he created us. We are actually part of this plan. Number 14. Everything in this dunya is created by Allah subhanahu wa ta'ala and no one else. Allah even created shaitan too. So why Allah subhanahu wa ta'ala created shaitan? Because of his mashiach and not his will. So now, the question is, what should we do? Whatever happens in this dunya is a combination of both Allah's will and ours. Allah wants everyone to become Muslim. But if we don't want to, it will not happen. For example, a matchstick itself wouldn't won't lit up. Only if it's rubbed against something, it will light up. Sometimes we plan things and things don't go according to our plan. Why? Because Allah didn't plan for it. That's why it doesn't happen. Allah knows past, present, and future. His knowledge is complete. He doesn't need to have past, present, and future knowledge. It's all same. Example, we use our GPS for our final destination, but we still don't know which car we will pass. Houston, for example, is seen by Allah subhanahu wa ta'ala at the same time He sees Dallas too. So for Him, past, present, future is same.
अभी तक जितनी बात सुनी है, इसके बाद आपके जहन में कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसी बात जो अभी तक जिक्र नहीं हुआ और आप पूछना चाहते हैं? जी आप, क्या हम तकदीर को बदल सकते हैं? देखिए कि तकदीर अल्लाह ने लिख दी है, कि बहुत ही ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इसको बंदा जब तक इन डेप्थ ना जाए मज़ा नहीं आता। आप इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा पैदा हुआ, बचपन से होते होवाते अल्लाह ताला ने उसकी उम्र 40 ईयर्स की लिखी थी। अब 40 ईयर्स की एज में वो बच्चा या मर्द जो था बीमार हो गया, बेड रिडन। अब उसकी बीवी ने उसके लिए दुआ की। अब यहाँ बड़ा प्रैक्टिकल है एक इशू, और बल्कि आप इसको इस तरह भी नोट कर सकते हैं कि क्या दुआ तकदीर को बदल सकती है। अब आप कहते हैं कि इसकी तकदीर में भी अल्लाह ताला ने 40 ईयर्स लिखे, तो फिर मैं दुआ क्यों करूँ? राइट, आपको क्या सिखाया अल्लाह के नबी सल्लम ने? आप दुआ कीजिए। हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल देती है। अच्छा, तो फिर तो हम भी तकदीर में शामिल हो गए। अब आप समझिएगा, आप दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को सेहत दे, आफ़ियत दे, इनको ज़िंदगी दे, अभी ये ठीक हो जाए। अल्लाह ताला आपकी दुआ सुनकर क्या कहते हैं? चलो फरिश्तों, इसने दुआ मांगी ना, तो मैं इसके हस्बैंड को 20 ईयर्स की और ज़िंदगी दे देता हूँ। इंक्रीज़ हो गई, 40 + 20 कितने हो गए? 60। असल में जब अल्लाह ताला के लिखे हुए को फरिश्ते जाके मैच करेंगे ना, तो वहाँ भी यही बात लिखी होगी। अल्लाह ने इसकी 40 लिखी थी, फिर इसकी बीवी, इसकी माँ या जिसकी इसको दुआ लगेगी वो इसके लिए दुआ करेगा, तो उसके कहने पे मैं 20 और बढ़ा के 60 कर दूँगा। समझे? और अगर आप दुआ ना करते तो 40 ही थी, तो दुआएँ करनी चाहिए। इतनी बात है कि जब आप दुआ करते हैं तो उससे जो तकदीर बदलती है ना, वो भी पहले से लिखा हुआ है। वरना तो आप देखिए, हम सब कहें कि चूंकि तकदीर लिख गई, अब इसको बदलना क्या है। तो मैं इसको एक मिसाल समझाती हूँ कि आप देखिए कि ये मेरा लैपटॉप है, मेरी मर्ज़ी, मैं इसमें कुछ भी डाउनलोड करूँ और मैं कुछ भी निकाल दूँ। आई हैव माई चॉइस, मुझे हक है ना कि मैं इस लैपटॉप के अंदर कुछ डालूँ और कुछ निकालूँ। तो क्या अल्लाह के पास इख्तियार नहीं है? अल्लाह ताला जो चाहे डाल दे, जो चाहे निकाले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक बहुत प्यारी दुआ मांगा करते थे, उसका मतलब क्या है इस दुआ का? कि अल्लाह अल्लाहुम्मा इन कुंता कतबताना शकीयन, ए अल्लाह अगर तूने मुझे बदबخت लिखा है तो फम हो, उसको मिटा दे, और फक्तुबनी सईदन। अपने लफ्ज़ों में आप इस दुआ को समझ लें कि अल्लाह अगर तूने मुझे बदनसीब लिखा है ना, तो उसको मिटा दे और मुझे खुशकिस्मत लिख दे, और अगर तूने मुझे खुशकिस्मतों में लिखा है तो इसको साबित कर दे, क्योंकि तेरे पास इल्मुल किताब है। अल्लाह सुबहान तआला के पास ओरिजिनल कॉपी है। आगे मिसाल मैं PDF की देती थी, अब तो PDF भी एडिटेबल है। आप में से जो लोग काम करते हैं उनको पता है कि वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट भेजें तो वो चेंज हो जाता है, लेकिन PDF में नहीं होता। अब वो भी होता है, लेकिन चलिए एक खास हद तक होता है ना। आप ये समझिए कि अल्लाह सुबहान तआला अपने पास लिखी हुई तकदीर को मिटाने का, बदलने का, उसमें कुछ ऐड ऑन करने का, कुछ निकालने का पूरा हक रखते हैं। दुआ तकदीर को बदलती है। दूसरी चीज़, सिला रहमी, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। हदीस में आता है कि इससे उम्र में इजाफा हो जाता है। रिश्तेदारों को मिलाना, किनशिप को कायम रखना, इसकी वजह से उम्र बढ़ती है। मैं अपने फैमिली के एक मिसाल दे सकती हूँ आपको। एक सिस्टर थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बुज़ुर्ग थी हमारे ख़ानदान की। उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ का जो शुरू का टाइम था ना, बहुत गुर्बत में गुजारा, जैसे पहले दौर में नॉर्मली लोग होते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बेटों में से एक बेटा बाहर चला गया, फिर उसने वहाँ जाके खूब मेहनत की, फिर उसने उसके बाद 1, 2, 5, 6 भाई थे, सबको बुला लिया। फिर एक ऐसा वक्त आया कि सबसे ज़्यादा अमीर फैमिली थी हमारे घरों की, लेकिन वो जो उनकी मदर थी ना, रिश्तेदारों को बहुत देती थी, उन्होंने अपने वो सारे ही बेटों की आलमोस्ट शादी अपने गरीब भाई बहनों के बच्चियों से की। और वो क्या करती थी, इतना ज़्यादा देती थी अपने रिश्तेदारों को। एक तो पैसों से देना होता है ना, लेकिन जैसे आप देखें ना, ज़रा अच्छे घर हो जाएं तो लोग गरीब रिश्तेदारों को नहीं बुलाते कि घर ख़राब होगा, ये होगा। उनका घर हर वक्त होटल था, हमने खुद देखा अपनी आंखों से। लोग आ रहे हैं, सौ सौ रोटियां भी बन रही हैं, खा रहे हैं, पका रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दौलत को अपने ऊपर नहीं सवार किया। अब क्या हुआ कि वो बीमार हुई, इतनी दफा जिसको आप अपनी जुबान में कह दें कि मौत के मुंह में से बच के बाहर आई, कि नो वन कैन इमेजिन। अक्सर कान सुनने को मुंतजर रहते थे हमारे खुद भी कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है और मर जाएंगी या क्या होगा। लेकिन 15-20 साल तक वो औरत जितनी भी दफा बीमार, सुयर सुयर बीमार हुई, लेकिन वापस है। और डॉक्टर्स हैरान थे, कहते थे कि क्या होता है हमारे साथ, जूं ही बिल्कुल इनकी बीमारी की आखिरी स्टेज लगती है ना, मैं एकदम ठीक हो जाती है, रियली। और कल मुझे किसी ने एक कहानी सुनाई, मैंने कहा असल में आप मेरे ये तकदीर वाले टॉपिक की तैयारी करा रही हैं, अनबिलीवेबल स्टोरीज। आप देखिए, जेनरस लोग, खुले हाथ से अल्लाह को देने वाले, लोगों को स्माइली फेस के साथ मिलने वाले, जिसको आप कह सकते हैं ना खुले दिल के लोग, आप आजमा के देख लीजिएगा कि अल्लाह ताला उनके साथ मिरेकल्स करता है। तो हमारी होस्ट थी, तो पहले भी मैं उनसे मिली हुई हूँ, आई लव हर, वो इतनी एक्टिव, लेकिन आप उनसे पूछें उनके जिस्म में कितनी बीमारियाँ, कहती कि मेरे पेट में बहुत दर्द रहती थी, मैं खा नहीं सकती थी कुछ भी। और आप सोचिए कि उस वक़्त ना कोई इतने चेकअप थे ना कुछ थे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजार कर जब डायग्नोस कराया तो डॉक्टर्स ने बताया कि इनकी एंटेस्टाइन जो है ना, उसमें कोई गड़बड़ है। अब लोग कैंसर का नाम नहीं लेते, लेकिन पहले दौर में कहते थे पेट में गोला है। वो दिन से लेकर आज उन्होंने मुझे अपनी एज बताई, आई थिंक सो शी इज़ नाउ 65। उस दिन से लेके आज तक शी गॉट कैंसर, बिल्कुल बीमारी की आखिरी हद पे होती हैं। ये जो उन्होंने बात सुनाई कि उनके पेट में डॉक्टर्स ने कहा कि एक इतना पोर्शन डिफेक्टेड है जिसमें कैंसर है और इसको सडनली रिमूव करना पड़ेगा, तो मैंने उसको सुन के भी कहा कोई बात नहीं, रमज़ान के बाद करा लेंगे। तो वो जो नर्स थी या डॉक्टर, वो परेशान के, तुम किस किस्म की औरत हो, ये कोई पालने वाली चीज़ है, ज़बरदस्ती कर करा। ये कहती थी मेरा ईमान है कि मुझे कुछ नहीं होगा, और सो जेनरस। हर कहती हैं कि 3 महीने टेस्ट होते रहे, डॉक्टर्स ने इधर जा उधर जा, ये कर वो कर, टेस्ट कर लिए। कहती मुझे यकीन था कि मुझे मौत आनी है तो ऐसे भी आ जानी है, खड़े खड़े कैसे भी आ जाएगी। मैं सिर्फ अपने बच्चों और डॉक्टर्स के डर से ऑपरेट करवाने के लिए तैयार हुई थी, वरना मुझे नहीं तैयार होना था। कहती कि जब मेरे ऑपरेशन की डेट में 2-3 दिन थे ना, कहती एक रात ऐसे ही मैंने ख्वाब देखा कि समवन खेम और उसने मुझे कहा कुछ भी नहीं निकला तुम्हारे पेट में से। और कहती हैं कि मैं अगले दिन जब सुबह उठी ना, तो मैं साफ तौर पे महसूस कर रही हूँ कि मेरे अंदर अब कुछ नहीं, सारे स्टमक पेन है, प्रॉब्लम्स हैं, जो भी। कहती मुझे लगा मेरे अंदर कुछ नहीं, लेकिन कहती मैं इसलिए नहीं बोली कि मेरे बच्चों ने मुझे कहना अम्मा पागल हो गई हैं। फिर वो उनको ऑपरेट करने ले गए, डॉक्टर्स ने कहती है मेरे पेट की, मेरी अंतड़ियाँ कहती पूरी बाहर निकाल के रखी, 3 दफ़ा ये हो चुका है रिपोर्ट्स में, एक्सरों में, सब कुछ है, लेकिन कहती हैं कि अंदर से कुछ भी नहीं निकला। डॉक्टर्स हैरान है, कुछ भी नहीं, रिपोर्ट्स में दिख रहा था, लेकिन एक्चुअली जब उन्होंने देखा उनको नहीं निकला। क्यों, कहाँ गया, उन्होंने कहा कि क्या हुआ, कहती मैंने पहले ख्वाब में देखा था कि ये नहीं होगा। फिर इसी तरह एक मौके पे उनको ब्रेस्ट पर एक छोटी सी गिल्टी निकली, इन्होंने पहले छुपाई रखी थी, मैं बताती नहीं किसी को, लेकिन उसमें पस भी निकली है। लेकिन कहती मैं, मेरा अल्लाह पे ईमान है कि मुझे ऐसे मौत नहीं आनी, वो वैसे भी आ जाएगी। और वाकई वो कहती हैं कि मेरे फिर उसके टेस्ट शुरू हो गए, जब वो टेस्ट शुरू हुए तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा इसके अंदर पस भी है और ये कैंसरस है, इसको निकालना पड़ेगा। कहने लगी मैंने दिल में सोचा था कि मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, ऐसे सबब लगा किसी ने मुझे कहा कि फलान जगह होम्योपैथी इलाज है, तो मुझसे भी जाके पूछ लो। मैं गई, उन्होंने सिम्टम्स देखी, देखा पूछा, कहती शी गेव मी सम ड्रॉप्स कि इसको जाके खाओ। कहती विद इन 10 डेज कि वो मेरी जो गिल्टी थी, एक तो वो ड्राई हुई, कहती एक दिन मैं बैठी हुई थी तो वो पूरी मटर के दाने की दाने की मेरे हाथ में आ गई। आई टुक इट इन पुट इन द बॉटल और मैं अपनी डॉक्टर के पास चली गई। वो कहती तुम क्या कर रही हो, कहती ये क्या, कहती ये वही है जो मेरे अंदर था, पूरी की पूरी वो बाहर आ गई। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो, उसने कहा बस मैंने कुछ दवाई खाई है तो ये पूरी बाहर आ। उन्होंने कहा नहीं, तुम इसको टेस्ट कराओ, टेस्ट कराओ, इसकी रूट्स होंगी, ये है वो है। उन्होंने उसको लेबॉर्ट्री टेस्ट कराया, ना उसमें कुछ निकला ना इसमें कुछ निकला। हालांकि उनकी कैफियत क्या, कहती कि मैं कुछ खा नहीं सकती, मैं पानी पीती हूँ तो मेरे पेट में दर्द, लेकिन शी इज सो एक्टिव, कोई उनके पास बैठ के इमेजिन नहीं कर सकता कि उनको इतने प्रॉब्लम है लेटने में, जागने में, सोने में, बट शी इज सो हैप्पी, पहनने में, ओढ़ने में, खिलाने में, काम करने में। लेकिन वो कहती हैं कि मैंने अपने दिल को इस बात पे यकीन रखा हुआ है कि मैंने बंदों की खिदमत करनी है। वह ममा यन्फो नासु फयम कुछ, इस पर मेरा अमल है। फिर कहती जैसे मेरा वो ऑपरेशन होना था ना, बड़ी मज़े की बात है, कहती मैंने इतना बड़ा बिरयानी का देगचा पकाया, मैंने नमक पारे बनाए, डब्बों का डिब्बे मैंने खाना फ्रीज किया कि जब मैं बीमार होंगी तो लोग मुझे देखने आएंगे तो कौन क्या कहेगा, क्योंकि ना घर में बहू ना बेटी कुछ, था बेटा था वो छोटा था यंग। कहती मैंने सब काम कर रही हूँ, भाग रही हूँ, कोई कह नहीं सकता था मेरा ऑपरेशन है। जब मैंने ऑपरेशन थिएटर से मुझे लाए और डॉक्टर्स ने बताया कुछ नहीं है, तो कहती मुझे जो होश आया तो मेरे मियाँ ने मुझे यही बात बताया, तेरे अंदर से कुछ नहीं निकला। कहती मेरा बेटा गया खुशी में फ्रिज में, जो मैंने बिरयानी पकाई थी वो सारी गर्म करके प्लेटें बांट के मोहल्ले को, मेरी अम्मी को कुछ नहीं है। आप यकीन कीजिए कि ये ईमान की बातें, ये शायद आप ही ना उस तरह समझ सकें, और जो सुनाता है अपनी बात उसकी बात का मज़ा ही और है। आप यकीन रखें कि अल्लाह ने आपका नसीब अच्छा बनाया है। एक मोमिन की ज़िंदगी में कभी दुख नहीं होता, हसरत नहीं होती, पछतावा नहीं होता, ये क्यों हुआ? अगर आप ये कहते हैं ना कि रदीतु बिल्लाहि रब्बन, आई एम प्लीज विद माई अल्लाह, मेरे अल्लाह ने जो मुझे दिया मैं उस पर खुश, जो नहीं दिया मैं उस पर और भी खुश, आपको कोई दुनिया में दुख नहीं दे सकता। ये जो हम दुखी हैं ना, परेशान है, बेटा नहीं, बच्चा नहीं, शौहर नहीं, शादी नहीं, बच्चों, ये हमारे ईमान का ज़ोफ़ है। आप देखिए कि नबी सल्लम और आपके अजवाज को देखिए, हज़रत आयशा के पास क्या था? औलाद थी? नहीं थी ना। घर में 2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। किसी मसलक की लिखी हुई कोई किताब जिसमें नबी सल्लम की दुआएं हों, ले आइए, कि आप और आयशा बैठे दे सर जोड़ के कह रहे हैं आयशा हमारे बुढ़ापे का क्या बनेगा, बेटे कोई नहीं। हत्ता कि हज़रत आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी अगर मुझे लैलतुल कदर नसीब हो जाए तो मैं क्या मांगू? हाँ मोते कहते एक बेटा तो मांग लेना ना, तेरे बुढ़ापे में काम आएगा। अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि अल्लाहुम्मा इन्ना कफूबुन तुहिब्बुल अफ्व फ़ाफ़ुनी, क्या आयशा अल्लाह से माफ़ी मांग ले? आपको तय कि अराउंड 50 ईयर्स हज़रत आयशा प्रॉफ़िट सल्लम के बाद ज़िंदा रहीं, मोर देन 50 ईयर्स, छोटी सी उम्र में गई थी और दुनिया से चले गए। हमारा ईमान कमज़ोर है,